आज है 13 जनवरी दिन बुधवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। तुर्की सरकार ने कहा सीरिया के एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने किया धमाका, आईएस से संबंध।
Saldırının failinin yabancı uyruklu bir DAEŞ mensubu olduğunu şu anda biliyoruz.
पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान वार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार, गृहमंत्री ने कहा।
अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है, अभी नहीं। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही यह फैसला लिया जाएगा।
अरुण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। तुर्की के इस्तांबुल में मंगलवार को हुए धमाके की जर्मनी ने कड़ी निंदा की है। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर जर्मनी के नागरिक शामिल हैं। जर्मनी की सरकार ने हमलों को बर्बर कार्रवाई बताया है। वहीं तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊदोग्लू ने कहा है कि इस्तांबुल में धमाका इस्लामिक स्टेट के सीरियाई चरमपंथी ने किया था। जर्मनी की सरकार ने अपराध करने वाले प्रवासियों का आसानी से प्रत्यर्पण करने के लिए कानून में बदलाव करने का फैसला किया है। कोलोन शहर में नए साल के मौके पर कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके लिए प्रवासी मूल के पुरुषों को जिम्मेदार बताया गया था। जर्मनी के न्याय मंत्री हेइको मास ने कहा है कि अपराध करने वाले प्रवासियों को कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा,
Kriminelle müssen in Deutschland konsequent zur Rechenschaft gezogen werden.
अपराधियों को जर्मनी में ही सजा दिलाई जानी चाहिए। हालांकि विदेशी अपराधियों के लिए प्रत्यर्पण भी एक विकल्प है, इसलिए हम चाहते हैं कि अपराधियों के प्रत्यर्पण को आसान बनाया जाए, ताकि जो अपराधी किसी के जीवन शरीर के खिलाफ कोई अपराध करे या यौन शोषण करे तो उसे सजा मिल सके। ये थे जर्मनी के न्याय मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान ने अमरीकी नौसेना की 2 गश्ती नावों को चालक दल के साथ हिरासत में ले लिया है। चालक दल के 10 सदस्यों को ईरान ने हिरासत में लिया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये नावें कुवैत और बहरीन के बीच प्रशिक्षण में लगी थीं। तकनीकी खराबी के कारण नावें ईरान की समुद्री सीमा में घुस गईं और हिरासत में ले ली गईं। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ संपर्क में हैं और वाशिंगटन के मुताबिक ईरान ने चालक दल के सदस्यों को वापस भेजने का भरोसा दिलाया है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने कहा है कि अमरीकी नावें गैर कानूनी तरीके से ईरान की समुद्री सीमा में घुस आई थी। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के एक मामले में ग्वेटमाला में पुलिस ने स्थानीय फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रायन जिमेनेज को गिरफ्तार किया है। जिमेनेज और कई दक्षिणी अमरीकी देशों के अधिकारियों के खिलाफ अमरीका ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद जिमेनेज दिसंबर से फरार चल रहे थे। उनके वकीलों ने कहा है कि वे प्रत्यर्पण का विरोध नहीं करेंगे और अमरीकी अदालत में ही मामला लड़ेंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सरकारी अधिकारियों ने जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन को देश से हजारों डीजल इंजन वाली हजारों गाड़ियों को वापस बुलाने की योजना को खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि फॉक्सवैगन के प्रस्ताव में गड़बड़ी वाले उत्सर्जन किट की समस्या को सुलझाने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊदोग्लू ने कहा है कि इस्तांबुल में धमाका सीरिया के एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने किया था और इसका संबंध चरमपंथी संगठन आईएस से था। इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए थे, जिसमें से ज्यादातर जर्मनी के नागरिक बताए जा रहे हैं। जर्मनी ने इस हमले की निंदा की है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने चरमपंथियों को मानवता का दुश्मन करार दिया। साथ ही जर्मनी ने अपने नागरिकों को चेताया कि तुर्की में और हमलों की आशंका के चलते वे भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थलों पर जाने से गुरेज करें। पूरे ब्यौरे के साथ हरिता कांडपाल।
तुर्की के इस्तांबुल शहर में धमाकों के लिए तुर्की सरकार ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराया है। धमाका इस्तांबुल के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र सुल्तान अहमद में मंगलवार को हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग घायल हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊतोग्लू ने कहा है कि इस्तांबुल में धमाका सीरिया के एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने किया है। अंकारा में अहमद दाऊतोग्लू ने कहा कि हम जानते हैं कि हमला एक विदेशी नागरिक ने किया है जो कि दाएश का सदस्य है।
Saldırının failinin yabancı uyruklu bir DEAŞ mensubu olduğunu şu anda biliyoruz.
मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि दाएश से हम उसी प्रतिबद्धता के साथ लड़ते रहेंगे। ये थे अहमद दाऊतोग्लू के शब्द। जर्मनी ने इस्तांबुल में हुए धमाकों की कड़ी निंदा की है और धमाकों को बर्बर कार्रवाई बताया है। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्कल ने पुष्टि कर दी है कि मंगलवार को हुए हमले में मारे गए 10 लोगों में से 8 लोग जर्मनी के थे। घायलों में भी कई जर्मनी के लोग शामिल हैं और एक नॉर्वे का पर्यटक भी शामिल है। एंगेला मर्कल ने चरमपंथियों को इंसानियत का दुश्मन बताया और कहा कि हमलों से लोगों का चरमपंथ से लड़ने का इरादा मजबूत ही होगा। एंगेला मर्कल ने कहा,
Der internationale Terror wählt die Orte seiner Anschläge unterschiedlich.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरमपंथी केवल अपना निशाना बदलते हैं। उनका मकसद एक ही है, आजाद समाज में हमारी आजाद जिंदगियों को निशाना बनाना। चरमपंथी हर आजाद इंसान के दुश्मन हैं, वो पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं, चाहे वो सीरिया हो, तुर्की, फ्रांस या जर्मनी हो। हम अपने साथियों के साथ मिलकर इसी आजादी के लिए चरमपंथ से लड़ते रहेंगे। ये थे एंगेला मर्कल के शब्द। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। सुल्तान अहमद चौक एक मशहूर पर्यटक स्थल है जहां कई विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। जर्मनी और डेनमार्क ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है कि इस्तांबुल में अब भी हमलों की आशंका बनी हुई है, इसलिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। नॉर्वे की मैग्ना वाजे नीलसन और उनके पति भी धमाकों के वक्त यहाँ मौजूद थे। मैग्ना वाजे नीलसन ने बताया कि ये बहुत भयावह था। जब आप पर्यटक के रूप में घूमने पहुँचते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और हवा का तेज दबाव बना। मैं पीछे मुड़ गई, लेकिन धमाकों की चिंगारियां और लाशों के जले हुए टुकड़े हमारे कपड़ों पर आकर चिपक गए। ये थे मैग्ना वाजे नीलसन के शब्द। तुर्की की राजधानी अंकारा में पिछले साल एक विशाल शांति रैली में हुए 3 धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की इन धमाकों के लिए चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार बताता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल धमाकों के बाद कहा कि तुर्की क्षेत्र के सभी चरमपंथियों के निशाने पर है। इस बीच कुर्द संगठन PKK और तुर्की के सुरक्षा बलों के बीच भी हिंसा का दौर तेज हो गया है। कुर्द संगठन स्वायत्तता के लिए तुर्की से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले साल जुलाई में युद्ध विराम टूटने के बाद हालात खराब हुए हैं।
तुर्की सरकार ने कहा सीरिया के संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने किया धमाका। ये थी हरिता कांडपाल।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
और अब रुख करते हैं भारत का। पंजाब के पठानकोट में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दोनों ही देश इस मुद्दे पर कुछ भी स्पष्ट कहने के लिए तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच वैसे बातचीत 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी को होनी है और इस उहापोह के बीच कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,
मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में अभी आप प्रतीक्षा कीजिए और चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है, अभी नहीं है। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही फैसला लिया जाएगा।
भारत का कहना है कि वो पठानकोट हमलों को लेकर पाकिस्तान को सबूत दे चुका है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इतना जल्दी पाकिस्तान पर अविश्वास का कारण नहीं बनता। सीधे चलते हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव के पास जो हाल ही में पठानकोट से रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। नितिन, ये बताइए कि एक दिन पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो हैं कड़क बयान देते हैं, फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि जल्दबाजी में अविश्वास का कारण नहीं बनता, क्या मतलब निकाला जाए?
सुशीला, देखिए ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन स्थिति होती जा रही है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर का जो बयान था वो साफ तौर पर उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा उसको भी वैसे ही नुकसान दिया जाना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह ने पहली बार, ये बात ज़रूरी है कि जब उन्होंने पिछली बार ट्वीट किया था पठानकोट हादसे के दौरान, हमले के दौरान, और कहा कि इतने कथित चरमपंथी मारे गए, उसके बाद काफ़ी लंबे गैप के बाद उन्होंने ये बयान दिया है। और एक बात जो तय है वो ये है कि ये बयान इसलिए आया है क्योंकि भारत सरकार शायद इस बात पर इंतज़ार कर रही है, पाकिस्तानी तमाम अखबारों में जैसे ट्रिब्यून वगैरह में इस तरह की खबरें छपती रही हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बनाई है वो तमाम जगह रेड कर रही है, कुछ लोगों को कथित तौर पर उन्होंने गिरफ्तार भी किया है, पूछताछ भी की है, उस पर भारत अभी बहुत आहिस्ता से चल रहा है। और जो इस पूरे मसले में जो एक सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो ये है कि दोनों ही मुल्कों ने इस मामले पर पठानकोट हवाई एयरबेस पर हमले के बाद बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योरिटी यानी राजनीतिक परिपक्वता का बहुत ही अगर हम कहें कि बेहतर उदाहरण दिया है, शायद पिछले 10-20 सालों में पहली बार, तो एकदम गलत नहीं होगा।
जी
जो जी
जी राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण दिया है। यहाँ ये न जानना चाहेंगे कि 15 जनवरी को बातचीत होनी है तो क्या नज़र आ रहा है, क्या समझा जाए, क्योंकि दोनों ही देश अभी तक साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं।
बिल्कुल, दोनों देश अभी तक साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे 2-3 कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस मामले पर जो अंतिम फैसला है वो ये जान लीजिए यकीनन दोनों देशों के प्रधानमंत्री ही लेंगे, ये बात तो तय है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से लेंगे, यहाँ से नरेंद्र मोदी लेंगे। दूसरी बात, जयशंकर जो भारत के विदेश सचिव हैं वो अपनी उनकी श्रीलंका की यात्रा पहले से तय थी वो उस पर निकल चुके हैं। सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह आपस में मुलाकात करते रहे हैं कल और परसों, पूरी सिचुएशन को जो है उसको एक तरह से समझने के लिए, लेकिन फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आएगा, चाहे दिल्ली में हो चाहे इस्लामाबाद में हो। और तीसरी बात यह है कि ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि इन दोनों देशों की जो बातचीत होती है उसमें जो दूसरी दुनिया की बड़ी महाशक्तियाँ हैं जैसे अमरीका वगैरह, उनकी दिलचस्पी कितने दिनों तक बनी रहती है इन वार्ताओं को लेकर। मुझे एक छोटी सी बात याद है, आज से कुछ वर्ष पहले जब पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक भारत आए थे, मेरी उनसे बात हो रही थी तो चाय पर उन्होंने मुझसे कहा था, हम दोनों मुल्कों की दिक्कत यही है कि जब नेता लोग आपस में बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो बयान ज्यादा तल्ख हो जाते हैं।
तो अब तो मुलाकात बहुत तेजी से हो रही है, तो देखते हैं अब क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन श्रीवास्तव इस जानकारी के लिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दाखिल किया। दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को ये कहकर खारिज कर दिया कि जेटली का कोई मान ही नहीं है तो हानि कैसे हुई। कोर्ट में दाखिल किए गए 2000 पन्ने के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने DDCA में भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज भी भेजे हैं। और क्या कहा है अपनी दलील में अरविंद केजरीवाल ने, बता रहे हैं निखिल रंजन।
केंद्रीय वित्त मंत्री की देश में कोई इज्जत नहीं है, वो 1,00,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं, उनका कोई मान ही नहीं तो फिर हानि कैसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया गया है। इस बयान के समर्थन में केजरीवाल ने 2000 पन्नों का दस्तावेज और 3 CD भी जमा की है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल इस जवाब में दस्तावेजों के जरिए जेटली की छवि को सम्मान से परे बताने की कोशिश की गई है। DDCA में कथित घोटाले के आरोप लगने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसी मुकदमे में मिली नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि ये मुकदमा उनकी पार्टी के लिए एक मौका है।
हम ये तो कहते हैं कि वे सार्वजनिक जीवन में हैं, तो उतनी ही स्क्रूटनी और प्रोबिटी उनको फेस करनी चाहिए जो वे अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज, अपने प्रतिद्वंद्वी पे लागू करते थे। पर साथ ही साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम माननीय कोर्ट में ये तमाम दस्तावेज रखें, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखें, CDs रखें, और आने वाले समय में हम और दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स कोर्ट में फाइल करेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि भारत के लोकतंत्र ने अरुण जेटली की सार्वजनिक छवि वाले दावे को कभी मान्यता नहीं दी। इसके पीछे उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जेटली की हार का जिक्र किया है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि पिछले चुनाव में BJP को जीत मिली थी लेकिन जेटली 1,00,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने जेटली के चुनावी हार की बात करने पर हैरानी जताई है, क्योंकि केजरीवाल खुद भी इस चुनाव में पराजित हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन,
बनारस की सरजमी पर करीब 4 लाख वोट से अरविंद केजरीवाल चुनाव में पराजित हो गए थे। शायद बोलते हुए बनारस भूल गए, मैं उनको बनारस याद दिलाता हूँ, तो क्या उनका मान है?
केजरीवाल के मुताबिक जेटली की ऐसी कोई छवि नहीं जिसे बचाने की जरूरत हो। कानून के जानकार भी केजरीवाल के बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं। वरिष्ठ वकील सूरत सिंह,
कोई व्यक्ति अगर वित्त मंत्री है भारत जैसे देश का, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए ये कहना कि उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, अपने आप में एक ये हास्यास्पद बात है। पता नहीं किन्होंने उनको एडवाइस किया है, वो ये ग्राउंड ले सकते थे कि क्योंकि वो पब्लिक फिगर है और पब्लिक फिगर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना वो डेफेमेशन में नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक फिगर का मतलब ही यही होता है कि अपने अपने जीवन को पब्लिक के लिए एक्सपोज किया है, तो उसमें अच्छी भी बातें आती हैं, बुरी भी बातें आती हैं। चुनाव अलग बात है, चुनाव में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कोई भी किसी भी प्रकार का अपमान करे ऐसा नहीं होता है।
अरुण जेटली 13 साल तक दिल्ली के क्रिकेट संस्था DDCA के प्रमुख रहे हैं और इस दौरान कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। खुद उनकी ही पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने भी DDCA में घोटाले की शिकायत की है और फिलहाल पार्टी से निलंबित हैं।
ये थे निखिल रंजन। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। हरिता कांडपाल स्टूडियो आ चुकी है। हरिता
जी, सुशीला, आज सबसे पहले मैं जिस खबर का जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ, मुख्य रूप से ये अमर उजाला में देखी मैंने, अफगानिस्तान में भारतीय मिशन पर हमले में शामिल थे पाकिस्तानी फौजी। मजार शरीफ में भारतीय मिशन पर जो हमला हुआ था उसे लेकर ये खबर है। बल्ख प्रांत में ये हमला हुआ था और दैनिक जागरण ने भी इसको उठाया है, अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले का सच उजागर हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश अखबार में भी हम इसे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स अटैक्ड इंडियन मिशन। अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया है कि जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी अधिकारी शामिल थे, तो इसे लेकर भारत में क्या प्रतिक्रिया होती है ये अब देखने वाली बात है आगे। और इसके अलावा जो खबर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को वक्त देना चाहिए, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया है जो विदेश सचिवों की वार्ता होने वाली है उसके पहले ये बयान आया है और ये बातें कही जा रही हैं कि वार्ता का क्या होगा, वार्ता होगी कि नहीं होगी, तो इसको लेकर भी अभी जो है टकटकी लगी हुई है लोगों की कि भारत पाक वार्ता का आगे क्या होने वाला है इसमें। और इसके अलावा एक खबर और जो मैं देख रही हूँ इसमें यह है कि अमेरिका ने F-16 विमान पाकिस्तान को देने की एक डील थी उसको खारिज कर दिया है और अमरीकी कांग्रेस ने इस डील को खारिज कर दिया है। इसमें ये कहा गया है कि अमरीकी हथियारों का भारत के खिलाफ होता रहा है इस्तेमाल, इसलिए जो है ओबामा प्रशासन को होल्ड का नोटिस दे दिया गया है। इसके अलावा मैं जिस खबर का आज और एक जिक्र करना चाहती हूँ ये कि गंगा सफाई के लिए UP और उत्तराखंड को फंड देने पर रोक लगा दी है। गंगा की सफाई में लापरवाही और प्रदूषण के स्रोतों की अपुष्ट जानकारी पर NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा प्राधिकरण को फटकार लगाई है और फंड देने पर रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा एक और जो खबर इंटरेस्टिंग सी मैंने देखी है इसमें वो ये कि मुंबई में जो सेल्फी लेने पर करीब 15 जगहों पर रोक लगा दी गई है।
ये दैनिक भास्कर की खबर है।
जी जी, हाल ही में जो है इसमें एक हादसा हुआ था कि समुद्र में एक लड़की जो है सेल्फी लेते हुए गिर गई, कॉलेज जाने वाली लड़की, छात्रा थी वो, और उसके बाद से इस पर रोक लगा दी गई है।
जी, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं हरिता, आपको सेल्फी लेने का कितना शौक है?
सेल्फी लेने का शौक है, लेकिन हाँ, मैं सुरक्षा का भी उतना ही ख्याल रखती हूँ।
चलिए, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए धन्यवाद। और इसी से जुड़ी है हमारी विशेष रिपोर्ट भी। वैसे किसी भी अच्छे नज़ारे या पल को कौन कैमरे में कैद नहीं करना चाहता, लेकिन अब इसकी जगह सेल्फी या खुद कैमरे से ली गई अपनी तस्वीर के चलन ने ले ली है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब आपको किसी सड़क, इमारत, बाग या रेस्टोरेंट में कोई ना कोई व्यक्ति सेल्फी लेता दिख जाएगा। तकनीक ने जहां मन मुताबिक लोगों को अपनी तस्वीर उतारने का मौका दिया है, वहीं इन सेल्फियों के चक्कर में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। उधर इस शौक ने एक नया बाजार भी तैयार कर दिया है। सेल्फी से आए बदलावों पर सुनिए अमित भास्कर की ये रिपोर्ट।
माना जाता है कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने सन 1839 में ली थी, लेकिन तब उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि उनका ये शौक 150 साल बाद लोगों में जुनून की तरफ फैल जाएगा। लोग स्मारक देखने तो जाएंगे, लेकिन स्मारक की खूबियों से ज़्यादा, उसके इतिहास से ज़्यादा, उसके सामने अपनी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाएंगे। हालांकि ये आदत कोई नई बात नहीं है, आपके घर में कोई पुरानी एल्बम हो तो निकाल कर देख लीजिए, 10-20 ऐसी फ़ोटो तो निकल ही आएंगी। लेकिन तब हमें एक दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती थी जो हमारी शक्ल को रील में या माइक्रोचिप में कैद करने के बाद कागज़ पर उतार कर देता था, लेकिन अब वो सब खत्म सा हो गया है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर पारुल बुद्धराजा।
पहले के जमाने में फोटोग्राफर्स बिल्डिंग्स के बाहर खड़े होकर बिल्डिंग के पिक्चर्स टूरिस्ट को देते थे, क्योंकि टूरिस्ट उस जगह का लुत्फ उठा सके। लेकिन अब जो है लोगों के पास अपने कैमराज और अपने फोन्स आ गए हैं, और खुद की सेल्फीज लेकर वो जो है अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है फोटोग्राफी बिजनेस जो है काफी डाउन चलता जा रहा है।
पारुल की माने तो लोगों में अपने इतिहास को समझने की ललक भी सेल्फी के हर क्लिक के साथ खत्म होती जा रही है।
वो उन मॉन्यूमेंट्स को देखते थे, अपनी हिस्ट्री को पहचानते थे और उस चीज में इंटरेस्ट लेते थे, ताकि जो है फोटोग्राफ से उनको बाद में भी मिल सकती है, क्योंकि आप बाहर जाकर जो है फोटोग्राफर खड़े होते थे और वो प्रिंटेड पिक्चर्स उनको प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में लोगों को ये होता है कि हम जो है सिर्फ पिक्चर क्लिक करें और चले जाएं। इस तरीके से फोटोग्राफी भी डाउन जा रही है और लोगों के अंदर जो पैट्रियोटिज्म का इंटरेस्ट है अपने कल्चर को लेकर, अपनी फेस्टिवल्स को लेकर, वो भी कम होता जा रहा है।
सेल्फी के इस दौर में जहां फोटो खींचकर जीविका चलाने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं सेल्फी स्टिक बेचने वालों की चांदी हो गई है। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर सेल्फी स्टिक बेचते राजेश कुमार।
सेल्फी स्टिक का जो ट्रेंड चला है, इसे सबसे ज्यादा यूज करने वाले यंग एजर है और बुजुर्ग जो भी ले जाते हैं, माता पिता, वो अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। नई चीज चली है, 2 महीने से बेच रहा हूँ, रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है।
अंदाजन कितना बिक जाता हुआ एक दिन में?
ये 100 पीस निकल जाते हैं
एक दिन में 100 पीस। और कितने का आता है करीब?
ये आता है 80 रुपीज का मिलता है, 100 का भेज देते हैं।
लाल किले के पास सेल्फी स्टिक बेच रहे सुमित को 2 महीने पहले ही सेल्फी स्टिक के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद से सेल्फी स्टिक के बिक्री को लेकर वो बहुत ही खुश नजर आते हैं।
2 महीने से मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने देखा ये आइटम क्या, इसके बारे में जाना। मैंने जब मैं फर्स्ट में अभी 2 हफ्ते पहले मैंने इसको लाया, मैं पहले दिन में करीबन इसको सेल किया 20 पीस, पहले 20 पीस सेल किया।
मुंबई से दिल्ली घूमने आए भवेश बताते हैं कि पहले उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई उनके कैमरे से उनकी तस्वीर खींच दे, लेकिन आज सेल्फी के कारण इसकी जरूरत नहीं है।
अभी सेल्फी जो ट्रेंड है, में बेनिफिट ये है कि हम फोटोग्राफी कहीं भी कर सकते हैं। किसी कोई आदमी की जरूरत नहीं कि हम किसी को पकड़ के बुलाए मेरा फोटो खींचो, कोई ऐसा प्लेस ऐसा मिस नहीं होती। अभी डायरेक्ट मोबाइल में है, ऐसे ऑन करो, डायरेक्ट फोटो खींचो, और कोई अपने को क्लिक लेना है साथ में फोटो फ्रेंड के साथ, तो उसको भी साथ में लेके सेल्फी खींच सकते हैं कहीं भी। और उससे बेनिफिट ये है कि मेमोरीज वो किधर भी कोई भी प्लेस के हम बना सकते हैं।
फोन की कीमत के साथ साथ उसके कैमरे की क्वालिटी भी उसी तेजी से बढ़ी है। इससे न सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने वालों की जीविका पर असर पड़ा है, बल्कि सेल्फी लेने वालों पर एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर हर्षित वालिया।
एक ट्रस्ट वैल्यू हो जाती है, यार मैंने खुद की फोटो खींची है और मैं किसी और से नहीं खिंचवा रहा हूँ। सेल्फी ने एक और चीज चेंज करी है, लोगों को लोग अपने बारे में अपने आप को कितना अंडरस्टैंड करते हैं वो आप एक फोटोग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप अपने आप को ऊपर से नीचे देखते हो तो आप क्या सोचते हो, और आप नीचे से ऊपर देखते हो तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी बड़े शख्स को जब इंट्रोड्यूस किया जाता था तो कैमरा हमेशा नीचे से ऊपर रखा जाता था, पर आज के टाइम में अगर आप सेल्फी देखें, आप उन्हें हमेशा देखेंगे कि उनकी आंखों के लेवल से ऊपर होता है हमेशा वो कैमरा। अगर साइकोलॉजिकली आप उस चीज को देखो तो वो एक लोअर सेल्फ स्टीम की भी डिफिनेशन कही जा सकती है।
बहुत जल्द आने वाली पीढ़ी 5 मिनट में फोटो निकाल कर देने वाले उन लोगों को इतिहास के पन्नों में देखेगी, और ये पन्ने भी किसी मोबाइल या टैब में ही खुले होंगे।
ये थी अमित भास्कर की रिपोर्ट। और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जान लेते हैं हरिता कांडपाल से।
भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी से विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी या नहीं, इस पर भारत का क्या रुख होगा, इस पर आज दिन भर नजर रहेगी। यूजीसी के दफ्तर के बाहर ऑक्यूपाई यूजीसी यानी यूजीसी पर कब्जा करो आंदोलन कर रहे छात्र दिल्ली में आज मार्च निकालेंगे। ये छात्र एमफिल की पढ़ाई के लिए हर महीने मिलने वाली फेलोशिप को बंद करने के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला रिव्यू समिति के पास है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन भाषण देने वाले हैं। बराक ओबामा अब कुछ ही महीनों के लिए व्हाइट हाउस में रहेंगे, ऐसे में ये उनके लिए लोगों के सामने अपनी नीतियों को रखने का आखिरी मौका होगा। इस साल अमरीका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले है। सुप्रीम कोर्ट में आज नेस्ले इंडिया के खिलाफ FSSAI की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। नेस्ले इंडिया की मैगी नूडल्स को मानकों से ज्यादा सीसा पाए जाने के बाद देश के कई राज्यों में बैन कर दिया गया था। FSSAI ने 13 अगस्त के बम्बई हाई कोर्ट के उस फैसले को FSSAI ने 13 अगस्त के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने मैगी की बिक्री पर से रोक हटाने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज विसल ब्लोअर की सुरक्षा पर कानून को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में ये बताने को कहा था कि विसल ब्लोअर की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने में उसे कितना वक्त लगेगा। पाकिस्तान की चरमपंथ विरोधी अदालत 2008 के मुंबई धमाकों के मामले में सुनवाई कर सकती है। मुंबई हमलों में लश्कर के संदिग्ध चरमपंथियों द्वारा इस्तेमाल की गई नाव की जांच के लिए एक आयोग बनाने को लेकर सरकारी वकीलों ने अर्जी दी थी। इस पर पाकिस्तान की अदालत आज कोई निर्णय कर सकती है। एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता वाले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की प्रबंधन समिति की आज बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते जस्टिस लोढ़ा ने क्रिकेट प्रबंधन में राजनीतिज्ञों को दूर रखने और प्रबंधन में 70 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को अधिकारी न बनाने जैसी सिफारिशें की हैं।
तो आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र, बता रही थी हरिता कांडपाल। उधर क्रिकेट की बात की जाए तो कल भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में भारत के रिकॉर्ड 309 रन बनाने के बावजूद 5 विकेट से वो हार गया। रोहित शर्मा के नाबाद 171 रनों की पारी पर भी पानी फिर गया। क्या रहे हार के कारण, जानने के लिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर और कोच रहे मदन लाल से बातचीत की।
मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत खराब मैच आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से ये मैच जीता है, और क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद ये पहला मैच भारत जीत जाए क्योंकि 310 रन काफी होते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ, तो उनकी फॉर्म अभी तक चल ही रही है और उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी इस बार इतना दमदार नजर नहीं आई, तो आपको लगता है कि स्लो ओवर्स में कुछ रन कम रहे भारत के लिए?
आप कह सकते हैं 5-10 रन कम रहे होंगे, पर उन्होंने मैच पहले ही खत्म कर दिया था। पर यह है कि स्लो ओवर में थोड़े से रन बनने चाहिए थे, पर यह है कि बॉलिंग उनकी इतनी ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दी। पर आप देखेंगे कि आने वाले मैचेस में शायद हो सकता है कि यही ऑस्ट्रेलियन बॉलर बेटर बॉलिंग करें क्योंकि उनका भी पहला मैच था, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में पैर जमाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पर यह है कि आपकी सही बात है कि हम 10-15 रन बन सकते थे।
और नए गेंदबाज बरिंदर सरन के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपको उनकी गेंदबाजी इंप्रेसिव लगी?
बरिंदर सरन के बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि देखिए हमें इतना नहीं किसी बॉलर को चढ़ा देना चाहिए कि जिससे कि वो कोई इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हमने उमेश यादव को भी बड़ा सिर्फ चढ़ा दिया था, अभी तक उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि बात पता है यहाँ पे क्या आती है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो उसको उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो उसके बारे में यही कहूंगा कि अभी उसका बॉलिंग एक्शन अच्छा लगा मुझे, रन अप अच्छा लगा, वहां यह है कि कितना ज्यादा वो परफॉर्मेंस करते हैं वो देखने वाली बात है।
और रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में आप क्या कहेंगे, भारत भले ही मैच हार गया लेकिन इन्होंने उम्मीद जगाई है कि ये इस दौरे पर अच्छा खेलेंगे?
देखिए दो एक ऐसे अहम खिलाड़ी हैं जो कि आपको मैच जिता सकते हैं। रोहित शर्मा जितना ज्यादा गेंद में उछाल होगा, जितना ज्यादा गेंद तेज आएगा उतना ज्यादा अच्छा खेल। अब विराट कोहली को आप जानते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है और उसके साथ साथ ये है कि उनको रन बनाने आते हैं, और ये दुख की बात है कि रोहित शर्मा 170 रन बना के भी हार के पाले में खड़े थे।
पूर्व ऑलराउंडर और कोच रहे मदन लाल से बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। तुर्की के इस्तांबुल में मंगलवार को हुए धमाके की जर्मनी ने कड़ी निंदा की है। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है जिनमें ज्यादातर जर्मनी के नागरिक शामिल हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊदोग्लू ने कहा है कि इस्तांबुल में धमाका इस्लामिक स्टेट के सीरियाई सदस्य ने किया है। जर्मनी की सरकार ने अपराध करने वाले प्रवासियों के प्रत्यर्पण को आसान बनाने के लिए कानून में बदलाव करने का फैसला किया है। ईरान ने अमरीकी नौसेना के 2 गश्ती नावों को नाव के चालक दल के साथ हिरासत में ले लिया है। चालक दल के 10 सदस्यों को ईरान ने हिरासत में लिया है। अमरीका ने कहा है कि ईरान ने भरोसा दिलाया है कि चालक दल के सदस्यों को वापस भेज दिया जाएगा।
बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।